मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 14 जून 2019 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन मित्र का नाम है विशाल गुप्ता, आप शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से हैं। फ्रेंड्स, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मैं नियमित रूप से आप सबको कुछ सूचनाएं देता हूं, तो कुछ सूचनाएं पहले मैं आपको देना चाहूंगा कि शनिवार और रविवार इन दो दिनों में डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, लेकिन कल यानी कि शनिवार को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज पढ़ने को मिलेंगी और साथ ही साथ आपको योजना के दो आर्टिकल मिलेंगे पढ़ने को, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, और कुरुक्षेत्र के भी आपको दो आर्टिकल मिलेंगे, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। इसके साथ ही साथ एक वीकली क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाता है जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है, एक आपके लिए यूं कह लीजिए कि प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह होता है। और इसके साथ ही साथ हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे विश्व की जो कुछ बड़ी शक्तियां हैं उन शक्तियों के संदर्भ में भारत की जो स्थिति है और भारत की जो विदेश नीति है और भारत की जो चुनौतियां हैं उनके बारे में कुछ बातें करना चाहूंगा, लेकिन पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। आपको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में पहुंच गए हैं। वहां क्या बातचीत होगी, क्या निष्कर्ष निकलेंगे, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अभी तो मीटिंग चल ही रही है, लेकिन यहां मैं स्पेशली आपका ध्यान बिश्केक की तरफ दिलाना चाहूंगा। बिश्केक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में यानी कि आईएएस एग्जामिनेशन में हो सकता है कि इस पर सीधे सीधे प्रश्न ना आए, लेकिन जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हैं उनमें पूछा जा सकता है कि ये बिश्केक क्या है या किस देश की राजधानी है। और याद रखिए, अगर ये पूछा जाएगा किस देश की राजधानी है तो जैसे ये है किर्गिस्तान की राजधानी तो उसमें कजाकिस्तान, इस तरह के आपको भ्रम करने वाले विकल्प दिए जाएंगे। तो दिमाग में आप 3-4 बार इसको दोहरा लीजिए, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, 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 है ना। इस यहां हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंच गए हैं और आपने ये भी न्यूज में देखा है, पढ़ा भी है कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की है, चीन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है, इस पर हम लोग बाद में बातें करेंगे। अखबारों में आप सबने एक बड़े उत्साहजनक खबर पढ़ी होगी कि भारत अब बहुत जल्दी ही सन 2030 तक बकायदे स्पेस स्टेशन स्थापित करने जा रहा है। अंतरिक्ष स्टेशन मतलब अंतरिक्ष में ही हमारा एक स्टेशन होगा जहां हमारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे और वहां फिर आराम से 15-20 दिन तक रह सकेंगे। केवल दुनिया में 2 देशों के पास ही अभी ये सुविधा है, ये बहुत बड़ी सफलता होगी। और साथ ही साथ आपने एक यह भी घोषणा सुनी होगी कि बहुत संभव है कि सन 2022 तक भारत अंतरिक्ष में अपने 2-3 यात्री भेज दे गगनयान के जरिए। तो आप देख रहे हैं कि भारत खासकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में कितनी जबरदस्त किस्म की उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है और इसका बहुत बड़ा श्रेय, नो डाउट, एकमात्र श्रेय आप कह लीजिए कि इसरो को जाता है। और इसरो सच पूछिए तो भारत के एक बहुत ही मॉडल इंस्टीट्यूशन में गिना भी जाता है। देखिए, वो सरकारी संस्थान है, इसके बावजूद उसकी जो उपलब्धियां हैं विश्व स्तरीय हैं। दोस्तों, अभी वायु तूफान के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन भी रहे हैं, उसमें एक भ्रम पैदा करने वाला वाक्य शायद आप लोगों को पढ़ने और सुनने को मिलता होगा। कभी ये आप सुनते होंगे कि जो वायु तूफान है, चक्रवाती तूफान है, यह हिंद महासागर में उठा। कभी कभी आप ये भी सुनते होंगे कि यह अरब सागर में उठा। तो आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए कि यह हिंद महासागर का क्या मामला है और यह अरब सागर का क्या मामला है। इसे मैं क्लियर कर दूं क्योंकि सिविल सर्विस इस तरह के आपके भ्रम का बहुत फायदा उठाना चाहता है और आप उससे कैसे बच सकते हैं ये वो टेस्ट करता है। देखिए, जो हिंद महासागर है वो महासागर है, वो बड़ा सागर है ना। अब इस महासागर में दूसरे बहुत छोटे छोटे सागर भी हो सकते हैं, खाड़ियां भी हो सकती हैं। अब आप देखिए कि हिंद महासागर भारत के संदर्भ में आप देखेंगे तो भारत के लेफ्ट में बकायदे अरब सागर है। अब जब हम ये कह रहे हैं कि ये जो तूफान है इससे सबसे ज्यादा खतरा किस राज्य को है, तो देखिए बार बार गुजरात का नाम आ रहा है। सबसे ज्यादा जो इससे प्रभावित होने वाला राज्य होगा वो गुजरात होगा। गुजरात कहां है? भारत के पश्चिम दिशा में है। और पश्चिम दिशा में कौन सा सागर है? अरब सागर है। तो अगर वो कह रहे हैं कि अरब सागर में या हिंद महासागर में, तो बात एक ही है, क्योंकि हिंद महासागर का ही एक छोटा सा हिस्सा अरब सागर है, और भारत के फिर पूर्व में आप देखते हैं बंगाल की खाड़ी है। तो अगर बंगाल की खाड़ी के साथ अगर हिंद महासागर को जोड़ा जाता है तब भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि अरब की खाड़ी भी हिंद महासागर का ही एक हिस्सा है। तो यह आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। रेडियो न्यूज में मित्रों आपने किसानों से संबंधित कुछ योजनाओं की बात सुनी, और उसमें सबसे ज्यादा जोर था किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर, जिसे KCC के नाम से जाना जाता है। आप मेंस के अपने प्रीवियस पेपर्स उठा करके देखिए तो किसानों पर, कृषि क्षेत्र पर आप कह लीजिए कि मेरी समझ से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, एवरेज आउट ऑफ 20 में से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये क्वेश्चन बड़े प्यारे होते हैं और बड़े सरल से होते हैं, बशर्ते कि बस आप थोड़ी सी तैयारी कर लें। अगर आप सोचेंगे कि केवल जनरल सेंस के आधार पर आप लिखाएंगे तो मैं समझता हूं कि आप बड़ी गलती कर रहे हैं। तो बात थी किसान क्रेडिट कार्ड की, न्यूज में आया है और सरकार इस पर बहुत जोर दे रही है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप किसान क्रेडिट कार्ड को थोड़ा सा अलग से तैयार कर ले, छोटा सा नोट्स भी बना ले। 1998 में ये शुरू हुआ, शुरू करने वाला जो बैंक था वो इंडियन बैंक था। इस पूरे के पूरे मामले को याद रखिए कि इस कृषि मंत्रालय नहीं देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखता है, और इसका जो पर्पज है वो बहुत सिंपल सा है कि किसानों की जो आवश्यकताएं होती हैं, जो ऋण की आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि कृषि क्षेत्र की जो ऋण की आवश्यकताएं हैं, उन्हें ऋण उपलब्ध कराना। अब ये जो ऋण उपलब्ध कराने का काम है, देखिए अब जो हमारे सार्वजनिक बैंक हैं वो सभी कर रहे हैं, उसमें कमर्शियल बैंक भी हैं, उसमें रीजनल रूरल बैंक भी हैं, और बाकायदे जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं वो सब इसके तहत शामिल हैं। ये किसान जिस किसान के पास क्रेडिट कार्ड होता है उसको अपनी फसलों के लिए, पंप सेट्स खरीदने के लिए, अपने जमीन का को विकसित करने के लिए, प्लांटेशन के लिए या डीप एरिगेशन के लिए अगर ऋण चाहिए, तो उन्हें बकायदे बिना किसी बहुत ज्यादा औपचारिकता के, जो उनकी लिमिट होती है उस क्रेडिट कार्ड में, उस लिमिट तक उन्हें ऋण उपलब्ध करा दिया जाता है। और इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट कृषि क्षेत्र में पड़ रहा है, हालांकि इसकी कुछ अपनी कमियां भी हैं कि बहुत से किसान ऋण वापस नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमें लगातार इस कोशिश में है कि इस योजना को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। न्यूज में मित्रों आपने माइनॉरिटी के बारे में खबरें सुनी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं, सरकार कैसे उनके विकास के लिए बहुत सी योजनाएं लेकर आ रही हैं। उसी में आज मैं एक योजना की तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट से मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, वो है 3E, यानी कि 3E। ये 3E कौन से हैं? एजुकेशन, दूसरा एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा एम्पावरमेंट, यानी कि शिक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण। इसके तहत आने वाले 5 सालों में लगभग 5 करोड़ लोगों को शिक्षित किया जाएगा, मतलब इस रूप में उन्हें सुविधा दी जाएगी, और इसमें 50% लड़कियां होंगी। तो ये जो 3E योजना है, इस पर आपकी विशेष ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा, इस ओर आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मित्रों ये आज के कुछ दूसरी खबरों के बारे में बातें थी, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। देखिए मैंने कहा कि विश्व की बड़ी शक्तियां एवं भारत, मैं ये थोड़ा सा अलग हट करके बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए अभी SCO में हमारे प्रधानमंत्री गए हैं, उनकी खबरें आ रही हैं, आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, फिर अभी G20 की बैठक में वहां फिर खबरें आएंगी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत की जो विदेश नीति है वो किस तरह से काम कर रही है, राइट। तो मैंने जानबूझ करके बड़ी शक्तियों को अभी लिया है, और खासकर जो हमारे पड़ोसी देश हैं इसके बारे में समय समय पर हम लोगों की बातें होती ही रहती हैं। देखिए विश्व की जब हम बड़ी शक्तियों का नाम लेते हैं तो उसमें हमारे सामने 3 सबसे बड़ी शक्तियां आती हैं। नंबर 1 अमेरिका, इसके बाद है रूस, और इसके बाद है चीन। ये 3 बड़ी शक्तियां हैं, और भारत को इन 3 बड़ी शक्तियों के साथ बहुत ही जबरदस्त संतुलन बनाकर के चलना है, और यही उसका सबसे बड़ा चैलेंज है। संतुलन बनाकर चलने का चैलेंज क्यों है, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी भारत जो है अमेरिका के काफी निकट है, मतलब दोनों के संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं कंपैरेटिवली। थोड़ा बहुत तो आप देखते हैं कि कभी इस पर शुल्क बढ़ा दिया और कभी कुछ और कर दिया, वो छोटी मोटी चीजें तो चलती ही रहती हैं, लेकिन भारत और अमेरिका के संबंध अभी काफी बेहतर हैं। अब दूसरी तरफ है रूस और चीन। प्रॉब्लम यहां है, भारत के व्यक्तिगत तौर पर रूस से भी बहुत अच्छे संबंध है। रूस भारत के साथ जो हथियार है, जो वेपन है, उनका सबसे बड़ा खरीदार भारत है। रूस के साथ भारत के पहले तो बहुत ही अच्छे संबंध रहे, लेकिन अमेरिका की तरफ झुकाव होने के बाद रूस के साथ संबंध थोड़े से कमजोर पड़े। और चूंकि रूस भी बिखर गया, उतनी बड़ी शक्ति नहीं रहा 1990-91 में, तो स्वाभाविक है कि फिर आप जो नौका कमजोर होगी उसमें आप यात्रा नहीं करना चाहेंगे। तो भारत ने भी थोड़ा सा विड्रॉ किया, लेकिन पिछले 10 सालों में पुतिन के नेतृत्व में रूस फिर से इमर्ज हो रहा है। तो भारत के रूस के साथ भी संबंध अच्छे हैं। चीन के साथ संबंध जो हमारे हैं वो आप जानते हैं, बड़े खट्टे मीठे संबंध हैं। तनाव लगातार चीन के साथ बना रहता है। भारत चीन का प्रतिस्पर्धी देश है पूरी दुनिया के मामले में। हिंद महासागर और साउथ चाइना सी में लगातार चीन अपना प्रभुत्व बढ़ाता चला जा रहा है। उसको लेकर के भारत बहुत ज्यादा चिंतित है। सीमा विवाद भी होते रहते हैं, डोकलाम जैसे मामले आते रहते हैं। इसके बावजूद भारत और चीन के संबंध कहीं न कहीं बेहतर ही हैं। अब जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि रूस और चीन के संबंध बहुत अच्छे हैं, भारत के संबंध रूस के साथ बहुत अच्छे हैं, चीन के साथ भी ठीक ठाक हैं। अब सवाल यह कि जब इन दोनों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, तो अमेरिका के साथ हम कैसे अपने संबंधों को बहुत बेहतर बना करके रख सकें, ये चैलेंज है। क्योंकि अमेरिका के संबंध रूस और चीन के साथ बेहतर नहीं है, और चीन के साथ अभी अमेरिका के संबंधों में कितना खिंचाव चल रहा है इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपने काफी कुछ इसके बारे में पढ़ा भी है। तो अब भारत के सामने चैलेंज ये है कि ये जो तीन त्रिकोण है, इन त्रिकोण का कैसे भारत एक संतुलन के साथ अपनी विदेश नीति में इस्तेमाल करे, ताकि अमेरिका के साथ भी दोस्ताना संबंध रहे, रशिया के साथ भी रहे और चीन के साथ भी रहे। भारत और चीन के संबंधों के बीच में अभी पाकिस्तान एक देश जरूर है जो एक कहीं ना कहीं तनाव पैदा कर देता है, खटास पैदा कर देता है। लेकिन फिर भी अब चीन बहुत अच्छे तरीके से समझ गया है कि पाकिस्तान मूलतः आतंकवादी जो संगठन है उनका एक शरण स्थली है, इसीलिए अब थोड़ी सी उसकी आवाज आतंकवाद के मामले में धीमी पड़ी है। और ये भारत के बहुत ज्यादा पक्ष में है, ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मित्रों, मैंने थोड़ी सी बेसिक्स बताई हैं आपको इन तीन चार देशों को लेकर के, जो एक विदेश नीति का जो एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, जो खाका तैयार होता है, वो मैंने आपके सामने रखा है। और मुझे यकीन है कि इस खाके को यदि आप थोड़ा सा भी समझ लेंगे तो विदेश नीति से संबंधित जब आप आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उन आर्टिकल्स को समझने में आपको अतिरिक्त मदद मिलेगी। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आज बहुत सी अच्छी अच्छी क्लिपिंग्स हैं दोस्तों, वो आप जरूर पढ़िएगा। और खासकर गुरुचरण दास जी का आर्टिकल तो आप पढ़िएगा, इसमें भारत और चीन का जो सिस्टम रहा है उस सिस्टम को लेकर के उन्होंने बड़े नए तरीके से लिखा है, मुझे आर्टिकल बहुत ही अच्छा लगा था, डेफिनेटली आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। दोस्तों, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से तीन दोस्तों के नाम हैं विजेता सेन, मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, और रवि कुमार दयालपुर बिहार से, आप सबका बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब डेली ऑडियो लेक्चर समाप्त करने से पहले मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहूंगा बीच के इन दो दिनों के लिए, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।